ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय क्वचित् च वात्या औपमेयया प्रमदया आरोहम् आरोपितः तत्काल रजसा रजनीभूतः इव असाधु मर्यादः रजस्वल अक्षः अपि दिग्देवता अतिरजः स्वलमति न विजानाति क्वचिच्च वात्यो वात्योपमयया प्रमदया रोहामारोपितः तत्काल रजसा रजनीभूत इव असाधु मर्यादः रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमति न विजानाति क्वचित् कभी च भी वात्या औपमेया बवंडर के सदृश प्रमदया सुंदर स्त्री रमणी आरोहम आरोपितः यौन सुख के लिए अंक में बिठाई गई तत्काल रजसा तत्क्षण भोगेच्छा से रजनी भूतः रात्रि का अंधकार इव सदृश असाधु मर्यादः सत्पुरुषों के समुचित आदर से रहित रजस्वल अक्षः आँखों में रजोगुण की धूल पड़ने से अंधी अपि भी दिग्देवता देव दिशाओं के देवता यथा सूर्य तथा चंद्र अति रजस्वल मति आसक्ति से पराजित बुद्धि न बिजानाती नहीं जान पाता कि चारों दिशाओं के देवताओं उसके अविवेक की जौनाचार को देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। कभी कभी यह बद्ध आत्मा धूल के बवंडर से अंधे के समान स्त्री की सुंदरता को देखता है, जिसे प्रमदा कहा जाता है। इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री के गोद में जा बैठता है। उस समय उसके विवेक पर भोगेच्छा विजय पाती है। इस प्रकार वह वासना से प्रायः अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता कि उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं। इस प्रकार वह भवितव्य दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध जौन सुख का आनंद लेता है। तात्पर्य, भगवत गीता 7:11 में कहा गया है, धर्मा विरोधो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। जौनाचार की अनुमति केवल संतान उत्पन्न करने के लिए दी जाती है, विषय सुख के लिए नहीं। वंश, समाज तथा विश्व के कल्याण हेतु उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए स्त्री प्रसंग किया जा सकता है, अन्यथा यह धार्मिक जीवन के विधि विधानों के विपरीत है। भौतिकतावादी मनुष्य को विश्वास नहीं होता कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नियमित है, और वह यह नहीं समझ पाता कि यदि वह कोई त्रुटि करता है तो विविध देवता उसके साक्षी स्वरूप रहते हैं। प्राणी अवैध है, यौनाचार का आनंद लेता है और कामंध होने के कारण यह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, किंतु श्री भगवान के दूत इसे अच्छी तरह देखते रहते हैं। फलस्वरूप वह प्राणी अनेक प्रकार से दंडित होता है। आजकल इस कलयुग में अवैध जौन संपर्क के कारण अनेक गर्भ रह जाते हैं और कभी कभी तो गर्भपात भी कराए जाते हैं। इन पापमय कर्मों के साक्षी हैं श्री भगवान के दूत। जो पुरुष तथा स्त्री ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं उन्हें भविष्य में प्रकृति के कठोर से कठोर नियमों के अनुसार दंडित किया जाता है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। अवैध कामाचार कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है, और जो इस कुकृत्य में लिप्त रहते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर दंडित किया जाता है। भगवत गीता 16:20 में इसकी पुष्टि हुई है। आसुरिम जो निमापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यन्ति अधमागति। हे अर्जुन, जन्म जन्म आसुरी जोनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ मुझको कभी प्राप्त नहीं होते और फिर सर्वाधिक अधम गति में जा गिरते हैं। श्री भगवान किसी को भी संसारिक नियमों के विरुद्ध कर्म करने की अनुमति नहीं देते। फलतः अवैध कामाचार जन्म जन्मांतर दंडित है। अवैध यौनाचार से गर्भाधान होता है और इन अवांछित गर्भाधानों के फलस्वरूप गर्भपात कराया जाता है। जो इन पापों में लिप्त होता है वह अगले जन्म में भी इसी प्रकार दंडित होता है। इस तरह मनुष्य भी अगले जन्म में अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और उसी प्रकार से बध कर दिए जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर रहकर इनसे बचा जा सकता है। इस तरह मनुष्य पाप पूर्ण कर्म नहीं करता। कामुक इच्छाओं के कारण अवैध कामाचार सबसे बड़ा पाप है। जब कोई रजोगुण से युक्त होता है तो उसे जन्म जन्मांतर दुख भोगना पड़ता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। भवाटवी का वर्णन चल रहा है। अटवी मतलब जंगल। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं फॉरेस्ट ऑफ इंजॉयमेंट। संसार भोग का एक विकट वन। भवाटवी जन्म मृत्यु रूप वन है। हम लोग इस भवाटवी का वर्णन सुन रहे हैं, बहुत बातें सुन चुके हैं। उसमें एक बात का वर्णन किया गया है कि कभी कभी बवंडर आ जाता है। आप लोग आंधी और बवंडर में अंतर जानते हैं ना? वृंदावन बिहारी, आंधी और बवंडर का क्या अंतर है? दिनेश जी खड़ा होकर सबको बतलाई, आंधी क्या है, बवंडर क्या है? आंधी और बवंडर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आंधी में हवा प्रायः एक दिशा में बहुत तेजी से बहती है, लेकिन बवंडर में हवा कभी इस दिशा में तब तक बदल भी जाती है। वो आंधी से ज्यादा खतरनाक बवंडर है इस अर्थ में कि आंधी आया और जिधर से हवा बह रही है तो उधर पीठ कर दीजिए तो आंख में उतना धूल नहीं पड़ेगा। उधर पीठ कर देंगे तो धूल पड़ेगा, कम पड़ेगा, लेकिन बवंडर है तो कहीं भी खड़ा हुई घूम करके वो आंख में धूल आ जाता है। इसी को आवर्त कहते हैं। तृणावर्त, तृणावर्त एक दैत्य था तो बवंडर के रूप में आया था, लेकिन वो तृणावर्त था। तृणावर्त का अर्थ है को घास का बवंडर था, धूल भी था और प्लस घास भी। कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि घास नहीं है, केवल धूल है, तो धूल उड़ेगा, और कहीं कहीं धूल भी है और घास भी है, तो अब बवंडर चलता है तो धूल भी घूमने लगता है और घास भी। तो हम केवल इतना कह रहे हैं कि आंधी और बवंडर एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि आंधी में अपने आंख के कुछ रक्षा कर सकते हैं, लेकिन बवंडर में कहीं खड़ा होइए, कैसे भी खड़ा होइए, और घूम फिर करके धूल आंख में आ ही जाता है। इससे भवाटवी में बवंडर का वर्णन किया गया है कि कभी कभी वह बवंडर में पड़ जाता है। और कभी कभी वह कंदरा में गिर जाता है। तो कंदरा का तो वर्णन बाद में आएगा, लेकिन पहले बवंडर का जो वर्णन किया गया उसको सुनिए। चलन क्वचित कंटक सर करांग्री नगार रुक्षर विमना इवास्त। यहीं से चलते हैं। क्वचित वात्य उपम्यया, जो बवंडर का वर्णन पीछे किया गया है तो कह रहे हैं कि ये बवंडर क्या है, तो कह रहे हैं कि बवंडर का उपमा दिया गया है प्रमदया आरोहम आरोपित, स्त्री को बवंडर कहा गया है। बवंडर आ जाता है तो आंख में इतनी धूल भर जाती है कि व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता है। आप लोग तृणावर्त घटना में सुनते हैं, जब वो बवंडर आया, वो आंधी ही था, बवंडर आने वाला था उसके पहले ही भगवान का वजन बढ़ने लगा। कथा इस प्रकार है कि एक दिन माँ यशोदा कृष्ण को अपने गोद में लेकर के लालन कर रही थी, चुम रही थी, उत्तोलन कर रही थी, और तब तक कृष्ण का भार बढ़ने लगा और बहुत तेजी से भार बढ़ने लगा। वो इतना भार बढ़ गया कि अब माँ यशोदा चाह करके भी कृष्ण को गोद में नहीं रख सकती। वे प्रश्न होगा कि भगवान क्यों अपना वजन बढ़ाने लगे, माँ गोद में ली है तो अपना वजन क्यों बढ़ाने लगे। और भक्तों ने विचार किया है कि भगवान को तो पता चल गया कि अब आंधी आने वाला है, बहुत तेज वायु आने वाला है, तो अब ये तृणावर्त वायुअस्त्र का प्रयोग कर रहा है तो हमको बचना होगा। वायुअस्त्र से बचने के लिए पर्वतास्त्र का सहारा लिया जाता है। वे आंधी बहुत शक्तिशाली होता है, कभी कभी उड़ा करके फेंक देता है, शेड को उड़ा करके फेंक देता है, क्या क्या करता है, लेकिन पर्वत पर कोई अस्त्र नहीं पड़ता है। अब जो वायुअस्त्र का प्रयोग कर रहा था तो भगवान भी अचलास्त्र धारण कर लिए, अब पर्वत का सहारा लेने लगे बचने के लिए। वहाँ आप वर्णन पढ़ेंगे कि माँ यशोदा अब कृष्ण को गोद में चाह करके भी नहीं रख सकती, असहाय हो गई। तब उसके मन में विचार आया कि मैं तो माँ हूँ कृष्ण का, लेकिन हमारी क्षमता तो नहीं है कि अब कृष्ण को गोद में रखे। तो एक माँ और है, सबकी माँ है, वो है पृथ्वी। तो एक तरह से अब बड़ी माँ को वे सौंप दे कि हम तो अपने बेटे को नहीं संभाल सकती, तो हे पृथ्वी देवी आप तो सबकी माँ है और कृष्ण की भी माँ हो, तब तुम ही इसको संभालो। और जे वहीं भूमि पर रखी और जगता माँ सुकर्म सु, अवे काम में चली गई। हरिश्री जी लिखते हैं कि स्त्री यशोदा के इस घटना से ये पता चलता है कि स्त्रियों का काम धंधा में बहुत मन लगता है। अपने पुत्र को छोड़ करके काम में लग गई। यद्यपि दूसरे आचार्य दूसरे ढंग से भी अर्थ कर रहे हैं, चिंतया मास वो केवल चिंता में पड़ी, कोई काम नहीं कर सकी। अन्वय दूसरे ढंग से करके ये भी अर्थ किया गया, अभी चिंता में पड़ी तब तक बवंडर आ गया। अब बवंडर आया तो इतना धूल भर गया कि कुछ नहीं देख रहा था। अरे दूसरे की बात तो दूर है, आत्मानम अपि, व्यक्ति अपने अंग को भी नहीं देख सकता था। सूर्य को ढकने के विषय में दो उपमा दिया जाता है, कभी कभी बादल से ढक जाता है और कभी कभी धूल से भी सूर्य ढक जाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। अब जरासंध जब आक्रमण किया और उस समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण बलराम जब निकले मथुरा से, यद्यपि छोटी सी सेना थी अल्पीय सा, और जाकर के शंख बजाए, चैलेंज स्वीकार किए, और जब ही कृष्ण बलराम मथुरा से बाहर निकले तो स्त्रियां बहुत चिंतित हो गई। यद्यपि वे युद्ध में नहीं जा रही थी लेकिन मथुरा में स्थित रह करके बहुत चिंता में पड़ गई, और स्त्रियां छत पर चढ़ करके देख रही थी सेना को। और कुछ देर तक तो सेना दिखाई दे रही थी, तब तक संतोष था, लेकिन अब जरा संध के सेना में भगवान की सेना वैसे छिप गई सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य बादल से या धूल से ढक जाता है। अब तो कृष्ण का ध्वजा भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम केवल यह कह रहे हैं कि बवंडर आता है तो एक तो अंधेरा छा जाता है, ऐसे दिखाई नहीं देता, आंख ठीक रहे फिर भी नहीं दिखाई देगा, और ऊपर से आंख में भी इतना धूल भर जाता है कि आदमी आंख ही नहीं खोल पाता है। बवंडर का यह लक्षण है, एक तो अंधेरा छा ही जाता है और आंख में इतना धूल भर जाता है कि कुछ भी व्यक्ति देख नहीं पाता। तो इस भवाटवी में प्रमदा को, कामनी को एक बवंडर से तुलना किया गया है। तो कह रहे हैं कि वात्या उपम्ययया, ये जो प्रमदा है, प्रमदा ये अपने आप में व्यक्त करता है कि बहुत भारी अविवेक छा जाता है। जैसे कोई शराब पी ले तो मतवाला हो जाता है, उसका विवेक समाप्त हो जाता है, और शराब भी मद कहते हैं उसको, लेकिन स्त्री को प्रमदा, उससे तगड़ा मद है। और अंग्रेजी का एक कवि कहा है, अरे मद जो वाइन है और जो उसको होल्ड करता है, पीता है, सेवन करता है, उसको कंज्यूम करता है, लेकिन वेमेन कंज्यूम बोथ होल्डर एंड बीहोल्डर। ये प्रमदा इतना भारी नशा है, स्त्री का इतना भारी नशा है कि जो साथ रहे, स्पर्श करे, तो उस पर तो नशा आएगा ही, वो देखने मात्र से नशा आ जाता है। तो इसी अर्थ में इसको प्रमदा, प्रकृष्ट मद, ये जो संसार में है जो स्थापित शराब है, उससे बड़ा शराब स्त्री है। तो स्त्री को कह रहे हैं कि बवंडर के समान है, और खास करके प्रमदया आरोहम आरोपित, जब स्त्री किसी व्यक्ति का आलिंगन में ले ले तो उस समय व्यक्ति का विवेक बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जैसे बवंडर आने से एक तो ऐसे ही अंधेरा छा जाता है और उसके आँख में भी धूल भर जाते हैं तो कुछ नहीं देख पाता, तो वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है के आरोपित तत्काल रजसा रजनी भूत इव असाधु मर्याद रजस्वलाक्षोपी दिग्देवता अति रजस्वल मति न विजनाती। जब स्त्री किसी पुरुष को अपने आलिंगन में लेती है तो दो तरह से वह अंधिभूत हो जाता है, एक तो गाढ़ आसक्ति बढ़ जाती है और तत्काल में भोग की इतनी तीव्र लालसा हो जाती है कि एकदम अंधा हो जाता है। ऐसे कोई कवि लिखा है कि सुनते हैं कि कौआ को रात में नहीं दिखाई देती है और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो कामांध व्यक्ति है तो उसको न रात में दिखाई देती है न दिन में दिखाई देती है। हमें श्लोक नहीं याद है लेकिन एग्जैक्ट यही भाव है। तो कह रहे हैं कि रजनी भूत, वो स्त्री खुद एक अज्ञानमय है, या आसक्ति को रजनी भूत कह रहे हैं, और ऊपर से तत्काल रजसा, उस समय इतना रजोगुण छा जाता है, भोग की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, मानो उसके आंख में धूल पड़ गया। जैसे बवंडर में धूल पड़ जाए तो व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता है, तो उसी तरह स्त्री जब अपने अंक में धारण करती है तो व्यक्ति इतना भूल जाता है, विवेक खो जाता है कि अब देवताओं का भी विचार नहीं करता है, वो पाप करने के लिए उद्यत हो जाता है, उसको यह स्मरण नहीं रहता कि हमारे कृत्य को देवता लोग देख रहे हैं। वास्तव में ये संसार चल रहा है तो ऐसे ही नहीं चल रहा है, इसकी सब व्यवस्था बनाई गई है। आप लोग कभी कभी अनुभव किए होंगे कि ये जमुना एक्सप्रेस वे पर चलते हैं तो कुछ एक एरिया है दोनों टोल के बीच में, दिल्ली जाना हो नोएडा जाना हो तो वहाँ कार का स्पीड ड्राइवर कम कर देते हैं। ये टोल के पहले हम लोग जा रहे थे तो 120 130 ले जा रहे थे, उधर कम कर दिए, और कम इसलिए कर दिए कि सब कैमरा लगाए हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है तो कार का स्पीड बढ़ाता है जल्दी से पहुंच जाए, और उसको फोटो के साथ वो आगे चलान प्रस्तुत कर देते हैं, फोटो भी दे देते हैं और फाइन कर देते हैं, बहुत दूर नहीं जाना होता है, बस नेक्स्ट टोल पर ही वे कर देते हैं। वैसे ही आप लोग देखते हैं, नेट पर देखते हैं, एकदम घना जंगल है, वहाँ आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, और वहाँ का चित्र आप देखते हैं, हाथी लड़ रहे हैं तो हाथी बाघ लड़ रहे हैं, एकदम घना जंगल है, तो चित्र आपके सामने कहाँ से आ गया? कोई कैसे वो चित्र आ जाता है? कोई कोई कहता है कि सेटेलाइट से ले लिया है, वे ऊपर कहीं आकाश में कैमरा है उससे चित्र आ जाता है ना। बहुत लोग देखते हैं जंगली पशु आपस में मिल रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सबका चित्र आ जाता है। तो जैसे आजकल चित्र आप खींच लेते हैं, खास करके पुलिस वाले कैमरा लगाए हैं फोटो के साथ चलान काट देते हैं, तो वैसे ये जो व्यवस्था है तो इसमें एक जगह नहीं अनेक जगह कैमरा लगा करके ऑपरेटर लोग बैठे हैं। या मंदिर में कभी कभी चोरी हो जाती है, किसी माता जी का पर्स गायब हो गया, लेकिन नील माधव अपने रूम से ही देख रहे थे कि हाथ ऐसे किया है, एक हाथ ऐसे प्रसाद में लगाया है, एक हाथ उसके पर्स के तरफ लगाया है। नील माधव अपने रूम में बैठे हैं लेकिन यहीं से देख लेते हैं। तो व्यक्ति जब बहुत कामुक हो जाता है तो भूल जाता है कि हमारे कृत्य को कोई देखने वाला है, बहुत कामुकता छा जाती है, खास करके स्त्री के अंक में, स्त्री के आलिंगन में व्यक्ति पड़ता है तो एकदम अंधा हो जाता है, उस समय उसका विचार समाप्त हो जाता है कि हमारे कृत्य को कोई देख भी रहा है। लेकिन भगवान की व्यवस्था है और 14 लोग सदैव एक एक व्यक्ति के कृत्य को देखते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में विष्णु दूत और जमदूतों में बहस होने लगा, और विष्णु दूत एक तरह से चैलेंज कर दिए जमदूतों को कि तुम लोग जमराज के दूत हो, कैसे हम लोग माने, और तुम लोग धर्म के सिद्धांत को जानते हो, कैसे हम माने। तो धड़ाधड़ बतलाने लगे धर्म का सिद्धांत कि हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हैं, हम लोग सेमिनार अटेंड किए हैं, क्या दंड का प्रोसेस है हम लोगों को पूरा पता है। तो पूरी बात तो आप नहीं कह सकते, लेकिन वे कह रहे हैं कि देखिए ये पापी है और इसके पाप का रिकॉर्ड है, यमराज जी सब रिकॉर्ड तैयार रखते हैं, और एक एक नहीं 14 साक्षी हैं। सूर्योग्नि खम मरुद गाव सोम संध्या अनि दिश कमको कालो धर्म इति येते दह्यस्य साक्षी। ये 14 लोग कैमरा लगा करके बैठे हैं और एक एक आचरण को देख रहे हैं। एक बार नाम गिन लेते हैं, सूर्य, सूर्य साक्षी हैं, हमारे एक एक व्यवहार को देख रहे हैं। अग्नि, अग्नि का अर्थ है अग्नि के अभिमानी देवता अग्नि देव, खम आकाश, मरुत हवा, गावह, गावह का अर्थ है वाणी, वाणी मतलब वाणी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी, सोम मतलब चंद्रमा, संध्या और अहनि, अहनि द्विवचन में है मतलब रात और दिन, दिशा दिशाएं, कम, कम का अर्थ होता है जल, एक कमंडल कहते हैं ना, तो जो क का घेरा बनाए उसको कमंडल कहते हैं, क मतलब जल, कुह मतलब पृथ्वी, कुबल है, काल एक काल के अभिमानी देवता, धर्म जमराज जी से भिन्न एक धर्म नामक देवता है, या जमराज जी को ही लिया जा सकता है। तो ये लोग व्यक्ति के एक एक कृत्य को एक एक आचरण को देखते हैं, लेकिन इस भवाटवी में जब आंधी आता है, बवंडर आता है, और बवंडर का मतलब यह है कि जब स्त्री का आलिंगन मिलता है तो व्यक्ति अब भूल जाता है कि हमारे कृत्य को कोई देख रहा है और वो अधर्म में लग जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी गीता का श्लोक उद्धृत करके स्थापित कर रहे हैं कि पाप कर्म किया तो एक जन्म नहीं अनेक जन्म में उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, जन्मनि जन्मनि, अनेक अनेक, खास करके व्यभिचार के पाप का फल अनेक जन्म में भोगना पड़ता है। तो भवाटवी का वर्णन कर रहे हैं, तो भवाटवी की स्थिति यह है कि प्रमदा से स्त्री से बिल्कुल व्यक्ति अंधा हो जाता है और सब विवेक खो जाता है, किसी को कर्म को करने को तैयार हो जाता है, पाप आचरण में उसको थोड़ा भी संकोच नहीं होता। तो ये भवाटवी का वर्णन है। वास्तव में इस भवाटवी में जो जीव पड़ा है उसकी दुर्गति क्यों है, क्यों वह इतना भोग के प्रति आकृष्ट है, स्त्री पुरुष क्यों परस्पर आकर्षित है, उसका कारण यह है कि उनका हृदय बिल्कुल सूखा हुआ है, उसमें रस का अभाव है। अब रस है नहीं, इसलिए स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति बहुत आकृष्ट हैं। यदि हृदय में रस का संचार हो जाए तो आकर्षण ढीला होने लगता है, और यदि रस की अनुभूति होने लगे तब तो फीका लगने लगता है, फीका नहीं बहुत कुत्सित लगने लगता है। इस विषय में एक भक्त की उक्ति है यमुनाचार्य जी के, यदवधि मम चेत कृष्ण पादा रविंदे नवनव रस धाम धामन उद्यतम रंतु मासित, करें कि जब से हमारा मन कृष्ण के चरणारविंद में उसके लिए विशेषण दे रहे हैं, नव नव रस धामनि उद्यतम, भगवान का चरण कमल ऐसा है कि वहाँ तो नित्य नए नए रस का उदय हो रहा, नए नए रस का उदय हो रहा। ये रस क्या होता है, रस को समझना चाहिए, चमत्कारी सुखम रसम, वैसा सुख का अनुभव हो जो चमत्कार उत्पन्न करे, चमत्कार उत्पन्न करे इसका अर्थ यह है कि आपको ऐसा अनुभव हो कि ऐसा तो कभी रस में पाया नहीं था। तो भगवान के चरण कमल में तो रोज नवीन नवीन रस है, तो कह रहे हैं रंतु मासित। अब यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि जब हमारा मन भगवान के चरण कमल में रमने लगा तद अवधि बत नारी संग में स्मर्य मारे, अब जब हमारा मन भगवान के चरण के रस का अनुभव करने लगा तो हमारी स्थिति यह हो गई कि अब स्त्री संगम की बात की स्मृति आती है, केवल स्मरण आ जाता है, कभी हम स्त्री का संग किए हैं तो स्मरण होते ही भवत मुख बिखार, एकदम नाक सिकुड़ जाता है और सुष्ट निष्टवनम च, और उल्टी होने लगता है। कभी कभी बहुत गंदा चीज आप देखते हैं तो कहते हैं नाक सिकोड़ लिया, तुरंत थूथू व्यक्ति करने लगता है। बहुत गंदा चीज देख लिया तो कभी कभी उल्टी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जब से भगवान के चरण कमल का रस का अनुभव करने लगा हमारा मन, उसमें रमने लगा, तब स्त्री के संगम की बात याद आते ही एकदम थुथु जी करने लगता है, लगता है कि उल्टी हो जाएगा। ये बहुत फीका रस है। तो भवाटवी में जो पड़े हुए हैं उनकी यह दुर्गति है। जो भक्ति में उन्नति कर लेते हैं तो उनको लिए ये कोई समस्या नहीं है। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में एक घटना है। एक बार की बात है, बनारस के एक बड़े विद्वान व्यक्ति प्रद्युम्न मिश्र जगन्नाथपुरी में गए और चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कहे कि हम आपके पास आए हैं, कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। बहुत श्रद्धालु थे, विद्वान थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का जस फैलाना चाहते हैं। तो कहे कि देखिए हम तो कृष्ण कथा जानते नहीं हैं, आपको कृष्ण कथा सुनना है तो आप राय रमानंद के पास चले जाइए, हम तो उन्हीं से कृष्ण कथा सुनते हैं। राय रमानंद जी बहुत बड़े अफसर थे, श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कमिश्नर रैंक के अफसर थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तो उनकी इच्छा हो गई कि हम चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और तुरंत वे रिजाइन दे दिए। ये बहुत दक्ष अफसर थे। वो राजा जब के पास रिजाइन लेटर गया तो पूछने लगा कि क्यों रिजाइन दे रहा है, तो बतलाए कि मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना चाहता हूँ। तो राजा खुशी खुशी छुट्टी दे दिया और वेतन करी लद्दू गुण, और छुट्टी भी दे दिया और सैलरी डबल कर दिया। ऐसा नहीं कि अब नौकरी छोड़ रहे हैं तो सैलरी आधा कर देंगे या कम कर देंगे, तो सैलरी भी बढ़ा दिया और चैतन्य महाप्रभु के साथ वे रहने लगे। जगन्नाथपुरी के बगल में ही उनका गांव है बिंतापुर। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज के साथ गए थे वहां। तो चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र से कहे कि हम तो कथा करना नहीं जानते, कथा हम तो सुनते हैं राय रमानंद से, और आपकी भी इच्छा है तो जाइए आप राय रमानंद से कथा सुनिए, वे कृष्ण कथा सुनाएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहे तो प्रद्युम्न मिश्र गए राय रमानंद जी के आवास पर। तो वहाँ उनके सेक्रेटरी ये सेवक उनको बैठाए, एक आप बैठिए थोड़े देर में राय रमानंद आएंगे तब आपको कृष्ण कथा सुनाएंगे, या मतलब मिलेंगे आपसे। प्रद्युम्न मिश्र वहाँ बैठे रहे, लेकिन बहुत देर हो गई। उसका कारण यह था कि राय रमानंद जी अब हॉल से बाहर जा कर के उद्यान में दो देवदासियों का श्रृंगार कर रहे थे। देवदासी कहते हैं कभी कभी माता पिता अपने पुत्री को भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। अभी सरकार इस प्रथा को बंद कर दी है। पहले जो बड़े बड़े मंदिर थे, खास करके जगन्नाथपुरी में, कुछ लड़कियों को उसके माता पिता भगवान की सेवा में ही अर्पित कर देते थे। अब भगवान ही उनके पति या जो हों उन्हीं की सेवा में रहती थी। तो राय रमानंद जी दो देवदासियों को लेकर के उद्यान में उनका श्रृंगार कर रहे थे। उसका कारण था जगन्नाथ जी के सामने उनको नृत्य प्रस्तुत करना था, ड्रामा प्रस्तुत करना था। राय रमानंद जी खुद लिखे थे ड्रामा, तो उनको पता था कि इस ड्रामा के परफॉर्मेंस के लिए, इसको प्रस्तुत करने के लिए कैसा वेश चाहिए, कैसा श्रृंगार चाहिए, कैसे गीत को गाया जाएगा, और गीत को गाया जा रहा है तो अनुभव को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, क्या अनुभव आएगा, तो उसके अनुसार कैसे हाथ हिलाना है, कैसे अंग हिलाना है, वो देवदासियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। क्योंकि भगवान के सेवा के लिए वे कृत्य कर रहे थे, दत्त चित्त हो करके उनका श्रृंगार कर रहे थे। अब श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार जब पूरा हुआ तो आए और देखे कि प्रद्युम्न मिश्र आए हैं, उनसे मिले, लेकिन प्रद्युम्न मिश्र कुछ उनसे कहे नहीं। उसका कारण था कि बहुत देर हो गई थी, अब सूर्यास्त होने वाला था, तो चुपचाप चले आए, चैतन्य महाप्रभु के पास आए। और चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछे कि कृष्ण कथा सुने, कहे कि ना कृष्ण कथा तो नहीं सुन पाए, लेकिन वे कहे कि हमको तो विचित्र बात सुनने को मिला, जो देवदासियों का श्रृंगार कर रहे थे उसी में समय चला गया। और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि हाँ, वे अपने ड्रामा के अभिनय के लिए उन देवदासियों का अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं, अपने से वस्त्र पहनाते हैं, और वस्त्र ही नहीं पहनाते हैं, अब उनके अंगों में निखार लाना है तो उसके गुह्य अंग को भी उसमें कुछ इत्र लगाते हैं, तेल लगाते हैं, सुगंधि लगाते हैं, और उसको हाथ से रगड़ते भी हैं, जो भी गुह्य अंग है उसका भी अपने हाथ से तेल लगाना, मार्जन करना, पोंछना, मलना, वस्त्र पहनाना, सब कार्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वे गृहस्थ हैं, हम सन्यासी हैं, हमारी स्थिति यह है कि स्त्री देखने की बात तो दूर है, स्त्री शब्द का उच्चारण करने से ही हमारे मन में भी विकार होता है और शरीर में भी विकार होता है, तन और मन दोनों तरह विकार हो जाता है। लेकिन राय रामानंद की अजब स्थिति है कि मानो काठ पत्थर जैसा, उन पर कोई विकार नहीं, उनके मन में कोई क्षोभ नहीं है, कुछ विकार नहीं है, जबकि अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं, सुगंधी लगाते हैं, मर्दन करते हैं। तो कह रहे हैं कि यह तो केवल राय रामानंद के लिए ही संभव है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है, अब राय रामानंद की क्या स्थिति है स्पेशल रूप से तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन शास्त्र दृष्टि से अनुरूप है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि विक्रीडितम ब्रजवधु भिरिदम च विष्णु, विक्रीडितम ब्रजवधु भिरिदम च विष्णु। और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के गोपियों के साथ जो लीला है इसका श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो भक्तिम परामुपगत, वह पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्तिम पराम उपलब्ध कामम हृदय रोग मास उपहिनोत अचिरेण धीर, अरे कि वो भक्ति के उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, जितना भक्ति में ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है उस ऊंचाई को प्राप्त करता है। और हृदय रोग कामम, ये जो हृदय का विकार है, काम है, आसु अपहिनोत, इसको तुरंत ही त्याग देता है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के मधुर लीला के श्रवण कीर्तन का यह फल है कि व्यक्ति काम विकार से ऊपर हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का मन वैसे ही लीला में अभिनिविष्ट है, रातों दिन उसी में लीन है, उसी में विभोर है, तो उसकी यह दशा हो कि स्त्री के स्पर्श से कोई विकार न आवे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम यह कह रहे हैं कि संसार की स्थिति है कि स्त्री के संपर्क से, उसके स्पर्श से व्यक्ति अपना विवेक खो जाता है, अब यहाँ तक ध्यान नहीं रखता है कि हमारे कृत्य को कोई देख रहा है, साक्षीगण हैं, हमको दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट होगा, ये सब विचार नहीं रहता है, भोग के लिए उद्यत हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि भक्ति में लग जाए तो भक्ति का ऐसा सुख है कि अब स्त्री संग का विचार आते ही उसके मुंह से थूथू निकलने लगता है, उल्टी होने लगता है, और एक स्थिति तो ऐसा संभव है कि कुछ उससे अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब संसार की जो दुर्गति है यह कृष्ण भक्ति के रस के अभाव के कारण, इसीलिए जो भवाटवी के दुर्गति से ऊपर जाना चाहते हैं तो उनका कर्तव्य यही है कि भक्ति के सुख का आस्वादन करें, बिना प्रयास के ही इस दुर्गति से ऊपर चले जाएंगे, ये कोई समस्या ही नहीं है। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो बस भोजन पेट में डाल दिया, पचाने के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, भोजन पच जाता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति का यह प्रभाव है कि मुक्ति उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, काम क्रोध इत्यादि दुर्गति से स्वतः मुक्त हो जाता है, ऊपर चला जाता है, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो इस भवाटवी में घूमते रहेंगे इतस्ततः, इसे बाहर निकलने वाले नहीं हैं। ये श्मशान के समान अपवित्र है, लेकिन इसी में दौड़ लगा रहा, इसी में कष्ट पा रहा। भवाटवी में दूर जाने के लिए भक्ति का आचरण करना होता है, यही श्रीमद्भागवतम का संदेश है। हरे कृष्ण।